नमस्कार भारत, आज है 16 अगस्त दिन शुक्रवार। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। सुरक्षा परिषद में आज कश्मीर मामले पर होगी चर्चा, पाकिस्तान को बैठक से बड़ी उम्मीद।
इससे पहले कि मोदी सरकार हिटलर का एक दूसरा नमूना पेश करे, सलामती काउंसिल को अपना किरदार अदा करना होगा।
पर क्या वाकई अहम है सुरक्षा परिषद में कश्मीर की चर्चा?
अब इनकी कोशिश ये होगी कि भारत के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पास हो, वो इनको नहीं हो पाएगा, इसलिए अगर कुछ इस तरह की बात हुई तो बहुत से कंट्रीज उसको वीटो कर देंगे।
सेना के ढांचे में होगा बड़ा बदलाव, तीनों अंगों की निगरानी करेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ।
ये तो मैं कहूंगा कि एक कंपल्शन है CDS को अपॉइंट कर, क्योंकि सेनाओं की सिनर्जी तभी होती है जब CDS होता है।
मगर पहले BBC समाचार।
BBC समाचार, दिलनवाज पाशा से। कश्मीर के हालात पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद आज बंद कमरे में बैठक करेगी। वहीं विवादित क्षेत्र कश्मीर को बांटने वाली नियंत्रण रेखा पर भारत और पाकिस्तान के बीच भारी गोलीबारी हुई है। पाकिस्तान का कहना है कि नियंत्रण रेखा पर भारत की ओर से की गई गोलीबारी में 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तान ने 5 भारतीय सैनिकों के मारे जाने का दावा भी किया है, जिसे भारत ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। भारत के भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव बेहद बड़ा हुआ है। इसराइल ने फलिस्तीनियों को लेकर अपनी नीति की आलोचना करने वाली 2 अमरीकी संसद सदस्यों की यात्रा को रोक दिया है। इस फैसले के बाद से अमेरिका में इसराइल की कड़ी आलोचना हो रही है। इसराइली सरकार ने इल्हान उमर और राशिदा तलाइब के आने पर रोक लगा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्विटर पर कहा था कि अगर इसराइल इन दोनों सांसदों को आने देता है तो इससे बड़ी कमजोरी के तौर पर देखा जाएगा। ट्रंप इन दोनों महिला सांसदों के खुले आलोचक हैं। उन्होंने कहा,
They are very anti-Jewish and they're very anti-Israel. I think it's disgraceful.
वो बहुत ही ज्यादा यहूदी विरोधी हैं और इसराइल विरोधी हैं। मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने कही हैं वो अपमानजनक हैं। ये सिर्फ कोई एक लाइन की गलती नहीं है जो उन्होंने इसराइल और यहूदी लोगों के लिए कहा है, वो बहुत खराब बात है और वो डेमोक्रेट पार्टी का चेहरा बन गई हैं। मैं ये कल्पना नहीं कर सकता कि इसराइल उन्हें क्यों आने देगा। अगर वो चाहें तो उन्हें आने दे सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि वो ऐसा क्यों करेंगे। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। दूसरी ओर अमरीकी कांग्रेस की अध्यक्ष और डेमोक्रेटिक नेता नैन्सी पेलोसी ने इसराइल से कहा है कि वो अपना फैसला बदल ले। वहीं प्राचीन यरूशलम शहर में 2 फलस्तीनी युवकों ने एक इसराइली सैनिक पर चाकू से हमला किया है। इसराइली बलों ने दोनों युवकों की गोली मार दी है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है। उत्तर कोरिया ने कहा है कि वो दक्षिण कोरिया के साथ कभी वार्ता नहीं करेगा। उत्तर कोरिया के आधिकारिक मीडिया में प्रसारित बयान में कहा गया है कि दक्षिण कोरिया इस धोखे में ना रहे कि अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास के बाद भी कोई वार्ता होगी। गुरुवार को दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जाए इन के भाषण की इस बयान में तीखी आलोचना की गई है। उन्होंने कहा था कि साल 2045 तक दोनों देश एक हो जाएंगे। इस साल कोरिया के जापान से आज़ादी के 100 वर्ष भी पूरे होंगे। वहीं दक्षिण कोरिया का कहना है कि आज सुबह उत्तर कोरिया ने उसके पूर्वी सागर क्षेत्र में 2 प्रोजेक्टाइल दागे हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी मिलनी अभी बाकी है। एल साल्वाडोर के सख्त गर्भपात विरोधी कानून के तहत मुकदमे का सामना कर रही एक युवती ने मुकदमे की दोबारा सुनवाई के दौरान अपने आप को बेगुनाह बताया है। इवलिन हर्नांडेज बलात्कार के बाद गर्भवती हो गई थी। हर्नांडेज का कहना है कि उसका मिसकैरेज हुआ था, लेकिन अभियोजकों का कहना है कि उसने गर्भपात की दवा ली थी। अदालत में इस युवती ने कहा, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि मैं बेगुनाह हूँ। मेरा मकसद सिर्फ अपनी पढ़ाई जारी रखना है और मैं अभियोजकों से गुजारिश करती हूँ कि वो इस बारे में सोचें, क्योंकि मैं वाकई बेगुनाह हूँ और मैं जज के लिए ये कहूँगी कि मैं जानती हूँ कि वो मेरे साथ न्याय करेंगे। ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक होगा, मैं बेगुनाह साबित होंगी। ब्राज़ील की एक अदालत ने कहा है कि एक पूर्व सैनिक पर एक वामपंथी कार्यकर्ता को कथित तौर पर अगवा करने के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर लाइव, और मैं हूं अपूर्व कृष्ण। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आज कश्मीर की स्थिति पर विचार के लिए बैठक बुलाई है। सुरक्षा परिषद के मौजूदा अध्यक्ष पोलैंड के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र में मौजूद बीबीसी की टीम को बताया है कि आज यानी शुक्रवार को स्थानीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे यानी जब भारत में शाम के 7:30 बजेंगे उस समय एक बैठक बुलाई है। बैठक चूंकि बंद कमरे में होगी इसलिए वहां का ब्यौरा बाहर नहीं आ पाएगा, मगर ये हो सकता है कि बैठक के बाद कोई बयान जारी किया जाए। बैठक चीन के अनुरोध पर बुलाई गई है। हालांकि इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की राजदूत मलीहा लोधी ने भी अपने विदेश मंत्री का पत्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को दिया था, जिसमें परिषद से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया था। कल पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस बैठक को लेकर काफी उम्मीद जताई।
पूरा कश्मीर, पूरा जम्मू लद्दाख एक ओपन एयर प्रिजन बन चुका है। उनकी निगाहें आज पाकिस्तान की तरफ लगी हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ लगी हैं, और अगर 50 साल बाद हमारा मुकदमा जो आपने शिमला मौदे के जरिए दो तरफा कर दिया था, आज अगर वो बैन अल-अक़वामी सतह पर पहुंच गया है तो मैं तवक्को करता हूं इससे पहले कि खून खराबा हो, इससे पहले कि मोदी सरकार हिटलर का एक दूसरा नमूना पेश करे, सलामती काउंसिल को अपना किरदार अदा करना होगा।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी कल ट्विटर के जरिए कश्मीर के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की खामोशी पर सवाल उठाया और कहा कि अगर क्षेत्र में मुसलमानों के खिलाफ जातीय हिंसा होती है तो मुस्लिम दुनिया में इसके गंभीर परिणाम होंगे। तो आखिर आज कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो विचार होना है उसमें क्या हो सकता है? भारत के पूर्व राजनयिक स्कंद तयाल के मुताबिक ये एक सामान्य प्रक्रिया है और पहले भी ऐसा हो चुका है।
जम्मू एंड कश्मीर का मामला 1 जनवरी 1948 से यूनाइटेड नेशंस के सामने है और बहुत सारे रेजोल्यूशन, शायद 11 रेजोल्यूशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अभी तक हो चुके हैं, पर पिछले जब से 1971 की वॉर के बाद और शिमला एग्रीमेंट के बाद ये पूरी दुनिया ये अब मानती है कि जम्मू कश्मीर का मामला भारत और पाकिस्तान के बीच में एक द्विपक्षीय मामला है जो भारत और पाकिस्तान को आपस में बातचीत करके सुलटाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जब भी इस मामले पर कुछ विचार करेगी तो वो इसी डायरेक्शन को या इसी पॉलिसी को दोबारा बोलेगी, जैसा कि रशिया ने बोला बड़ा क्लियरली कि ये जम्मू कश्मीर का मामला भारत और पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय मामला है। दूसरी चीज़ है कि जो पाकिस्तान ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई लड़ाई हो जाने का अंदेशा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेन मैंडेट जो है, उनका मेन काम है कि पूरी दुनिया में अमन चैन रहे और कहीं भी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। तो मैं समझता हूँ कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से एक अपील इस तरह की आ सकती है भारत और पाकिस्तान दोनों को कि आप जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी मुद्दा है, उसको आपस में बातचीत करके सुलझाएं और ये इंश्योर करें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई लड़ाई ना हो। अगर इस तरह का कोई वक्तव्य सिक्योरिटी काउंसिल से आता है तो मुझे लगता है हमें उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए।
पूर्व राजनयिक स्कंद तयाल। और विदेश मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार कमर आगा का भी कहना है कि सुरक्षा परिषद की बैठक में चर्चा होने का मतलब ये कतई नहीं है कि यूएन इस मामले में हस्तक्षेप कर रहा है।
उसका एक प्रोसीजर होता है, उसके तहत ये मीटिंग तो कॉल करा सकते हैं। अब इनकी कोशिश ये होगी कि भारत के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पास हो या कुछ इस तरह का, वो इनको नहीं हो पाएगा, इसलिए कि अगर कुछ इस तरह की बात हुई तो बहुत से कंट्रीज़ उसको वीटो कर देंगे, एक नहीं बल्कि कई कंट्रीज़ जो हैं परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, इसलिए कि सभी सिक्योरिटी मेंबर्स का जो स्टेटमेंट आया है 370 को लेके या कश्मीर को लेके, सबने एक ही चीज़ कही है कि ये दो पक्षीय मामला है, आपस में ये लोग बातचीत करें, हिंदुस्तान का इंटरनल मैटर है। इसके ऊपर किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। चाइना की जो आपत्ति है वो जो है लद्दाख को लेके कि उसको जो यूनियन टेरिटरी बनाई है, लेकिन हमारी बातचीत उनसे भी चल रही है तो आई डोंट थिंक कि वो भी वोट देने की पोजीशन में होंगे। इस तरह का रेजोल्यूशन या इस तरह की चीज़ें, पाकिस्तान की असल में कोशिश ये होती है कि हर मसले को यूनाइटेड नेशन में भारत से जो रिलेटेड हो उसको उठाए, कश्मीर को न्यूज़ में बना के रखे, खासतौर से इंटरनेशनल न्यूज़ में थर्ड पार्टी मीडिएशन की कोशिश करता, लेकिन अभी तक तो उसको कोई कामयाबी नहीं मिली है। मैं समझता हूँ इस रेजोल्यूशन में भी कोई उनको कामयाबी नहीं मिलेगी।
वरिष्ठ पत्रकार कमर आगा। इधर भारत में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में कश्मीर का जिक्र तो किया, पर पाकिस्तान का नाम एक बार भी नहीं लिया।
70 साल हर किसी ने कुछ न कुछ प्रयास किया, हर सरकारों ने कोई न कोई प्रयास किया, लेकिन इच्छित परिणाम नहीं मिले। और जब इच्छित परिणाम नहीं मिले हैं तो नए सिरे से सोचने की, नए सिरे से कदम बढ़ाने की आवश्यकता होती, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों की आशा आकांक्षा पूरी हो, ये हम सबका दायित्व है। उनके सपनों को नए पंख मिले, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। और उसके लिए 130 करोड़ देशवासियों ने इस जिम्मेवारी को उठाना है, और इस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए जो भी रुकावटें सामने आई हैं उनको दूर करने का हमने प्रयास किया है।
इस बीच भारत प्रशासित कश्मीर के कई इलाकों में पिछले 12 दिन से कर्फ्यू जारी है, और भारी सुरक्षा के बीच कल श्रीनगर में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने शेर कश्मीर स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा लहराया। मगर श्रीनगर के ही बाहरी इलाके सूरा में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर निकल अपना विरोध भी जताया।
मोदी को बोलो पहले कर्फ्यू उठा दो, बाद में देखो आर्टिकल 370 रह जाएगा या हर जाएगा।
हमें आजादी चाहिए, हम लेंगे, चाहे एक बंदा यहाँ कश्मीर में रहे वो भी आजादी लेने।
हमें अपना हक चाहिए, हमें अपने हक चाहिए, आजादी है, हम अपनी आजादी मांगनी चाहिए।
हम क्या चाहते हैं?
आजादी।
हम क्या चाहते हैं?
आजादी।
हम क्या चाहते हैं?
आजादी।
उधर जम्मू में भी तिरंगा फहरा, मगर वहां कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा निरस्त करने के भारत सरकार के फैसले का समर्थन करने वाले लोगों ने अपनी बात रखी।
एक आजादी वो थी जो 15 अगस्त 1947 को मिली, पूरे देश को मिली और जम्मू कश्मीर को भी मिली, लेकिन चंद ताकतें जो अपने आप में जिनका जो सांप्रदायिक थी, जिनके अपना इंटरेस्ट था, जो जम्मू कश्मीर के नाम पे लेके सिर्फ अपना और अपने परिवार का सोचना चाहते थे, जिनके दौरान यहाँ पे आतंकवाद, यहाँ पे सांप्रदायवाद या यहाँ पे जिसे कहते हैं फंडामेंटलिज्म यहाँ पे काफी बड़ा है, आज उन सबका खात्मा हुआ है।
जब 370 खत्म हुआ तो हमें बहुत खुशी हुई, हम यही समझते हैं कि आज 5 अगस्त को हम आजाद हुए।
ये आज मैं कह रहा हूँ आपको कि उन पार्टियों के उन लोगों के मुंह पे तमाचा है, वो देखें कि आजादी ये है, ये जो धारा 370 थी ये इसी में सब कुछ बांध के रखा हुआ था, जंजीरें थी, ये आज खुल गई हैं। आज मैं मानता हूं कि देश आजाद है और आजादी का जश्न जो है यहां पे लोग मना रहे हैं।
उधर ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भी कल भारत प्रशासित कश्मीर को लेकर प्रदर्शन हुए। वहां फैसले का विरोध और समर्थन करने वाले दो अलग अलग समूह भारतीय उच्चायोग के बाहर जमा हुए। बीबीसी संवाददाता गगन सभरवाल भी वहां मौजूद थी, सुनिए उनकी रिपोर्ट।
लंदन में गुरुवार को लोगों का ये हुजूम नजर आया। ये सभी जम्मू कश्मीर का खास दर्जा खत्म करने का विरोध कर रहे थे। प्रोटेस्टर्स भारतीय हाई कमीशन के दफ्तर के बाहर जुटे। विरोध प्रदर्शन का आयोजन ब्रिटेन की कश्मीर काउंसिल ने किया था। कश्मीरियों के अलावा कई खालिस्तान संगठनों के लोग भी प्रदर्शन में शामिल हुए। इनके साथ कई अन्य भारतीय संगठनों ने भी इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। प्रोटेस्टर्स भारत सरकार के खिलाफ गुस्सा थे और उनकी मांग है कि भारत सरकार को विशेष दर्जा बहाल करना चाहिए। प्रोटेस्टर्स का कहना था,
ये जुल्म है, ज्यादती है, क्योंकि कश्मीर के लोगों को हक खुद अख्तियारी होना चाहिए, उनको अपनी मर्जी से फैसला करने का राइट होना चाहिए।
ये हमारे मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों के हक पर डाका मारा गया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, टोटली इलीगल है, ये ऐसा नहीं हो सकता।
भाई आप इस तरह करें, यूएन वाले कल मीट करें, वहाँ पे उनको ऑफर करें और कहें कि आप आके फैसला करवा जाएं। अगर फैसला मेजॉरिटी करती है, अगर वो ये कहते हैं कि हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, मैं चुप हो जाऊंगा।
इसी प्रदर्शन से कुछ दूरी पर भारतीयों का एक समूह आजादी का जश्न मनाने के लिए भी जमा हुआ था। स्वतंत्रता दिवस मनाने इकट्ठा हुए लोगों का कहना था,
हमारा एक कंट्री है, सब एक लोग हैं, पता नहीं क्यों इन लोगों में ये भावना है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट डिफरेंट क्यों खो रहे हैं। भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है, वो सेलिब्रेट करने आए हैं हमारे देश की आज़ादी 1947 से, 70 साल हो गए हैं, लेकिन आजकल भी अभी तक उनका ये झगड़ा चल रहा है, ये बड़ा देख के मन खराब हो रहा है।
मैं बिल्कुल मोदी जी को 100% सपोर्ट करती हूँ, जो भी करता है वो
हमारे मुल्क के लिए बड़ा बड़ा अच्छा किया और करता रहेगा।
तो आप बताइए कि 370 की जो भी स्टेटस था उसका फायदा क्या था? कोई उसके फायदे की बात नहीं करते हैं, कोई फायदा की बात। 70 साल में देखो कितनी हालत खराब हो गई, दुश्मनावट कितनी बढ़ गई, कोई फायदा ही नहीं था। 35 है, कोई फायदा नहीं था, अब फायदा होने वाला है इस सब से। अब देखना कश्मीरी कितना आगे बढ़ेगा।
इस दौरान स्कॉटलैंड यार्ड के 100 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स तैनात थे। लंदन के अलावा बर्मिंगम, लूटन, ब्रैडफर्ड में भी भारत प्रशासित कश्मीर को लेकर भारत सरकार के कदम के खिलाफ प्रदर्शन हो चुके हैं। लोगों की राय ये है कि आने वाले दिनों में अभी इस तरह के और प्रदर्शन हो सकते हैं। गगन सबरवाल, बीबीसी न्यूज, लंदन।
घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है।
The Eid namaz were offered at different mosques. After the prayer, the congregation dispersed peacefully.
अंदर से लोगों के अंदर मतलब भरा हुआ है, जो ही लोगों को मौका मिलेगा ये उबल पड़ेगा।
फोन कॉल्स बंद है, इंटरनेट बंद है।
इंटरनेट बंद हो या कर्फ्यू लगा हो,
बीबीसी हिंदी रेडियो हमेशा आपके साथ।
इस शुक्रवार 16 अगस्त से दिन भर कार्यक्रम का प्रसारण पूरे एक घंटे तक होगा।
भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 से 8:30 बजे तक हफ्ते के सातों दिन
25 और 31 मीटर बैंड यानी 9460, 9510, 11795 और 11995 किलोहर्ट्ज़ पर।
बीबीसी हिंदी रेडियो।
तो आज शाम से दिन भर का समय हो जाएगा एक घंटे। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सेना के ढांचे में एक बड़े बदलाव का ऐलान करते हुए कहा कि तीनों सेनाओं की निगरानी के लिए एक नया पद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS बनाया जाएगा। सशस्त्र सेनाओं के ये सर्वोच्च अधिकारी सैन्य सुधारों को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्षस्थ स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है।
मगर CDS कैसे नियुक्त होगा, कैसे काम करेगा और उसकी जिम्मेदारी क्या होगी, इसको लेकर अभी बहुत कुछ साफ नहीं है। CDS की नियुक्ति कितनी अहम है ये समझने के लिए हमारे सहयोगी संदीप राय ने सेना के रिटायर्ड अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग से बात की।
जब लॉर्ड किस्मे ने पहली बार भारत के लिए ये रिकमेंडेशंस किए थे कि भारत की सेनाएं कैसी होनी चाहिए, उन्होंने भी CDS को रिकमेंड किया था और भारत ने शुरू में काफी पहल की और जो हमारी नेशनल डिफेंस अकेडमी है वो विश्व की सबसे पहली कंबाइंड सर्विसेज अकेडमी थी जिसमें तीनों सर्विस के कैडेट ट्रेन होते हैं और जो हमारा डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है वो भी शुरू से ट्राई सर्विस था। लेकिन बीच में जो सेना के अंदर रिफॉर्म होने चाहिए थे वो नहीं हुए, उसकी बहुत वजह है। तीनों आर्मी नेवी एयरफोर्स हैं, जो उनके चीफ थे उनके अपने अपने डोमेन होते हैं, वो अपनी सर्विस में ऑल पावरफुल थे और वो नहीं चाहते थे कि उनके ये डोमेन जो है ये उनसे छीने जाए और वो एक कमांडर के नीचे आए और जो चीफ्स हैं सर्विसेज के उनका काम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग तक सीमित रह जाएगा और कंबाइंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नीचे जो थिएटर कमांड होंगे वो फिर डायरेक्टली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नीचे काम करते हैं, उनमें सर्विस चीफ का कोई अधिकार नहीं होगा। हमारे देश में एक और प्रॉब्लम थी कि जो हमारा सिविलियन कंट्रोल जिसको हम कहते हैं वो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू होता है और इसके लिए हमारी ब्यूरोक्रेसी भी काफी अरब थी, वो नहीं चाहती थी कि उनकी जो कंट्रोल है सेनाओं के ऊपर वो खत्म हो जाए। और आखिर में जो एक डर बैठा हुआ है था पॉलिटिकल लीडरशिप में, जैसे कि पाकिस्तान में हुआ, बहुत से दूसरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हुआ, अफ्रीकन कंट्रीज में हुआ कि सेनाओं ने गवर्नमेंट के ऊपर कब्जा कर लिया, तो ये एक हिडन फियर था कि पॉलिटिकल लीडरशिप में जिसकी वजह से ये रिफॉर्म नहीं हो रहे थे। 99 में जब कारगिल युद्ध हुआ उसके बाद जो रिपोर्ट थी कारगिल कमेटी की, फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया कि हमें रिफॉर्म्स के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाना चाहिए और थिएटर कमांड बनानी चाहिए।
CDS की जो नियुक्ति है उसे सरकार हासिल क्या करना चाहती है?
ये तो मैं कहूंगा कि एक कंपल्शन है CDS को अपॉइंट कर, क्योंकि सेनाओं की सिनर्जी तभी होती है जब CDS होता है। अभी हम बजट तीनों सर्विस को देते हैं, तीनों सर्विस अपनी डिमांड बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है, पैसा कम है, तीनों सर्विसेज आपस में लड़ती रहती है। डिफेंस सेक्रेटरी जो है क्योंकि वो उसको प्रोसेस करते हैं, वो एक तरह से हालांकि जूनियर होने के बावजूद वो एक वो बन जाते हैं ऊपर, जैसे कि एक जज बन जाते हैं उस बात के ऊपर। और ये फिर एंड में क्या होता है कि सभी को थोड़ा थोड़ा मिल जाता है, और जो असली चीजों की रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी अगर सेनाओं की तरफ देखा जाए तो अगर इंडिया को ग्रेट पावर बनना है, पावर प्रोजेक्शन करनी है, तो अच्छी एयरफोर्स और नेवी होने की बहुत सख्त जरूरत है। और ताकि बजट का ज्यादा हिस्सा उनकी तरफ जाना चाहिए, जबकि बजट का जो ज्यादा हिस्सा है वो हमारे सेना की तरफ जाता है, क्योंकि सेना बहुत बड़ी है। तो इसमें एक ही रिफॉर्म नहीं, बहुत से रिफॉर्मों की जरूरत है, वो करने पड़ेंगे।
आपको लगता है कि मोदी सरकार आर्मी में रिफॉर्म को लेकर के सीरियस है और उसने पहला कदम उठाया है?
देखिए, अगर उन्होंने CDS का ये वादा किया है तो मेरे ख्याल में ये इतनी जल्दी नहीं होने वाला कि कल CDS रिपोर्ट हो जाएगा। अगर हो भी जाए तो जो असली प्रोसीजर्स हैं और कैसे वो CDS काम करेगा और कैसे हम आगे बढ़ेंगे, उसको करने में मेरे हिसाब से कम 5 साल का समय चाहिए। क्योंकि एक और अहम बात है कि जब आप CDS अपॉइंट करते हैं, फिर आपको थिएटर कमांड भी बनाने चाहिए। अगर आप थिएटर कमांड नहीं बनाएंगे तो CDS बनाने का कोई फायदा नहीं होगा, वो सिर्फ एक और अपॉइंटमेंट क्रिएट हो जाएगी।
रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग। और आइए अब नज़र डालते हैं आज भारतीय अखबारों की प्रमुख खबरों पर। दिल्ली से छपे अखबारों के साथ दिलनवाज पाशा स्टूडियो में है। दिलनवाज, क्या है आज बड़ी खबरें?
जी, कल 15 अगस्त था, भारत का स्वतंत्रता दिवस, और सलामी लेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगभग हर अखबार के पहले पन्ने पर है। जो खबर हमने अभी बताई ना, भारत टाइम्स उसी पर लिखता है प्रधानमंत्री लाएंगे तीनों सेनाओं का सेनापति। और दैनिक जागरण ने बताया है जनता ने काम करने भेजा है, काम करूंगा नरेंद्र मोदी। इसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज बैठक है उससे जुड़ी खबरें अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। इसी खबर पर नवभारत टाइम्स लिखता है पाकिस्तान ने उकसाया तो चीन ने कश्मीर पर चली चाल। और अब मेरे हाथ में है द इंडियन एक्सप्रेस, जो अपनी एक विशेष रिपोर्ट में बता रहा है कि देश में अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत बिखरे पड़े हैं। देश के ऑटो सेक्टर में जो है मंदी की खबर आई थी, उसके बाद अब ये अखबार बता रहा है कि सिर्फ ये ऑटो सेक्टर तक सीमित नहीं है, ये संकेत पूरे देश में बिखरे पड़े हैं। मेरे हाथ में है द हिंदुस्तान टाइम्स और पहलू खान, जिनकी जिन पर फैसला आया कल, उनसे जुड़ी खबर है। अखबार लिखता है पहलू खान का फैसले ने जो जाँच थी उसमें गंभीर सवाल खड़े किए हैं, और लगभग इसी शीर्षक से इस पर इस खबर पर जो है सभी अखबारों ने, अलग अलग अखबारों ने इसे जगह दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी हुई है, ये खबर भी अलग अलग अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है तनाव, पाक को मुंह तोड़ जवाब, 3 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए। वहीं इसी पर दैनिक जागरण ने लिखा है पुंछ में गोलीबारी, पाक के 3 सैनिक किए ढेर। और दिल्ली में सरकार ने फैसला लिया है कि अक्टूबर के अंत से जो DTC बसें हैं उनमें महिलाओं के लिए यात्रा फ्री होगी। कहीं कहीं छोटी छोटी खबर ये भी छपी है।
धन्यवाद बहुत बहुत दिलनवाज। और अब चर्चा बाढ़ की। केरल में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार हो चुका है, और अभी भी भूस्खलन में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि कुछ इलाकों में पानी कम होने से राहत कैंपों में रहने वाले 2 लाख लोगों में से कुछ लोग अपने घरों को लौटने लगे हैं, लेकिन उनके घरों की हालत ऐसी हो गई है कि उसमें रहना काफ़ी मुश्किल है। BBC संवाददाता दीप्ति बथिनी बता रही हैं वहाँ का हाल।
पिछले एक हफ्ते में जितने भी बारिश और यहाँ पे लैंडस्लाइड हुए हैं उसमें डेथ टोल काफी बढ़ गई है, 100 से भी ज्यादा डेथ टोल अभी आ रही है। बट एक थोड़ा सा रिलीफ ये है कि लाइक जो लोग रिलीफ कैंप्स में आए थे, कम से कम 2 लाख से भी ज्यादा लोग रिलीफ कैंप में थे पिछले 4-5 दिन तक, बट एक आध दिन से थोड़े जगहों के लोग वापस अपने घर जा रहे हैं। कल हमने एक जगह का नूर जिले में गए थे जहाँ पे वहाँ के लोग वापस अपने घर गए, पर घर पे जो हालात थे, जो हमने देखे थे घर के हालात, घर पे जो सामान होना चाहिए वो घर के अंदर कुछ भी नहीं बचा है। अब उनके कपड़े, TV, जो सामान है घर के, किचन के सामान हो या किताबें हो, सब कुछ बाहर आ चुका था। कन्नूर जिले में आनंदवली से बात किया था, जो अपना घर साफ कर ये रिलीफ कैंप से वापस आकर, जब रिलीफ कैंप गए थे उनको पता नहीं था कि घर किस हालात में है, घर पे पूरा पानी, उनका जो फर्स्ट फ्लोर का रूफ है वहां तक पानी आ चुका था। उस दिन जो डर था उनको कि जिंदा बचेंगे कि नहीं, इस चीज का उनको ज्यादा डर था। तो अभी आगे की जिंदगी फिर से वो अपनी नॉर्मल लाइफ में बनाने की कोशिश में लगे हैं। वो ये कहती हैं,
बाढ़ से घर का सारा सामान बह गया, जो कुछ बचा है वो सब घर के बाहर है।
जो साइकोलॉजिस्ट है यहाँ के, फारिस अब्दुल गफूर, जो रिलीफ कैंप्स में जाके बच्चों के साथ एक्टिविटीज में एंगेज करके उनको काउंसलिंग वगैरह दे रहे हैं, उनका कहना ये है कि लाइक वो काउंसलिंग के बाद जो बच्चों के चेहरे में जो खुशी है, वो खुशी देख के पेरेंट्स भी थोड़ा खुश हो रहे, जो अपने घर वाले अपने लव्ड वंस को खो चुके थे या उनका प्रॉपर्टी खो चुके हैं, वो बच्चों को खुश देखकर थोड़ा उनका भी रिलीफ हो रहा है, वो कहते
लोगों में हम थोड़ी खुशी बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में बच्चे खेल रहे हैं, गाना गा रहे हैं और खुश हैं। बच्चों को खुश देखकर माँ बाप में भी सुकून दिख रहा है और धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आ रही है।
यहाँ पे जब रिलीफ कैंप में हमने बच्चों से बात की, एक स्कूल स्टूडेंट का मानना ये था कि हम नेचर को जितना इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर फील्ड्स को हमें कंक्रीट जंगल बना के रखे हैं, जो जहाँ पे जंगलों में पेड़ पौधे होने चाहिए वहाँ पे बिल्डिंग्स बना दिए हैं, ये हमारा किया कराया है। तो वो बता रही थी कि ये हमें फेस करना ही पड़ेगा अंटिल एंड अनलेस हम नेचर को भी उसी तरह देखें जिस तरह अब तरह हम देखना चाहते हैं। उनका कहना है,
जो हम प्रकृति के खिलाफ कर रहे हैं वो हमें वैसा ही लौटा रही है। खेती की जमीन को कंक्रीट के जंगल में बदल रहे हैं, हम पहाड़ों को मिट्टी में मिला रहे हैं। जो हमारे सामने है वो स्वाभाविक है, जितना भी हो सकता है हम मदद कर रहे हैं।
डॉक्टर थॉमस आइज़ैक जो है यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर जो है, उन्होंने एक ट्वीट किया था कुछ दिन पहले कि जून जुलाई में केरला में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी और सिर्फ अगस्त के पहले हफ्ते से लेकर जितनी भी बारिश हुई है उस वजह से ये पूरी बाढ़ आ गई है। उनके ट्वीट में उन्होंने एक ये भी कहा था कि ये क्लाइमेट चेंज का ये क्लियर एग्जाम्पल है।
दीप्ति बथनी की रिपोर्ट। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं इंदु पांडे। भारतीय रेसलर दीपक पुनिया ने बुधवार को जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत के इतिहास रचा। दीपक ने 86 किलोग्राम जूनियर फ्रीस्टाइल वर्ग में रूस के एलिक शेवचोखोव को हराकर गोल्ड मेडल पे कब्जा किया। 86 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती इवेंट में उन्होंने ये खिताब जीता और 2018 में उन्होंने इस कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था और 18 साल में इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले वो पहले भारतीय पहलवान बने। तो वहीं 92 किलो वर्ग में विकी ने मंगोलिया के बातमगनाई एखतुवशीन को 4-3 से हरा करके ब्रॉन्ज मेडल पे कब्जा किया। और इसी के साथ हम आपको ये भी बताएं कि अगले हफ्ते विश्व चैंपियनशिप के ट्रायल्स किए जाने हैं और ट्रायल्स की विजेता कजाकिस्तान में 14 से 22 सितंबर तक होने वाली विश्व चैंपियनशिप में भाग लेंगे। और अब बात क्रिकेट की। भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 सीरीज के बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज भी 2-0 से वेस्ट इंडीज से अपने नाम कर ली है। पोर्ट ऑफ स्पेन के मैदान पर विराट कोहली ने लगातार दूसरा शतक जमाते हुए 99 गेंदों में 114 रनों की पारी खेली, उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। वेस्टइंडीज अपने घर में ही भारत से T20 और वनडे सीरीज हार चुका है। दोनों टीमों के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 22 अगस्त से शुरू हो जाएगी। तो जब हमने क्रिकेट एक्सपर्ट विजय लोकपल्ली से पूछा कि क्या इस टेस्ट सीरीज में कुछ रोमांचक मुकाबले हमें देखने को मिलेंगे,
जैसे क्रिकेट अभी हमने T20 या इसमें देखी है, मुझे नहीं लगता वेस्टइंडीज भारत का जो डोमिनेशन है वो रोक पाएगी। भारत के पास एसेंशियली मैं कहूंगा बॉलर्स बहुत अच्छे हैं टेस्ट मैचेस के लिए और वेस्टइंडीज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि 4-4 दिन में दोनों मैच ना हार जाए कहीं। क्रिकेट के लिए अच्छा होगा कि सीरीज अच्छी हो क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, T20 के सामने वो टेस्ट क्रिकेट कहीं घुटने ना टेक दे।
तो इसी के साथ भारत की क्रिकेट टीम ने T20 सीरीज के बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है और अब सबकी निगाहें टेस्ट मैच के ऊपर होंगी। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और सभा समापन से पहले मुख्य समाचार।
कश्मीर के हालात पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद आज बंद कमरे में बैठक करेगी। दक्षिण कोरिया की सेना का कहना है कि उत्तर कोरिया ने समंदर की ओर 2 प्रोजेक्टाइल दागे हैं। ये मिसाइलें हो सकती हैं। इस महीने उत्तर कोरिया का ये 6ठा ऐसा परीक्षण है। इसराइल ने फलिस्तीनियों को लेकर अपनी नीति की आलोचना करने वाले 2 अमरीकी संसद सदस्यों की यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया है। प्राचीन यरूशलम शहर में 2 फलस्तीनी युवकों ने एक इजरायली सैनिक पर चाकू से हमला किया है। इजरायली बलों ने दोनों युवकों को गोली मार दी है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे दिल नवाज पाशा। ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया तिलक भाटिया ने। तो अब अपूर्व कृष्ण को दीजिए अनुमति। नमस्कार।